फांसीवाद के स्रोत मैक्सी ने लिखा है कि फांसीवाद दर्शन में अनेक तत्वों का बड़ी चतुराई के साथ मिश्रण कर लिया गया है और इसके स्रोतों को ढूंढ निकालना सरल कार्य नहीं। मैकियावेली, हॉब्स, फिक्टे, त्रिसके, नीत्शे, मार्क्स, सोरेल, मोस्का, शोपेनहावर, बर्गसन, जेम्स और परेटो के विचारों के अतिरिक्त अन्य अनेक विचारधाराओं का प्रभाव इस पर स्पष्ट दिखाई देता है। मैक्स वर्गन का विचार है कि फांसीवाद सामाजिक डार्विनवाद, अबौद्धिकतावाद, परंपरावाद और आदर्शवाद से प्रभावित है। इसमें जेम्स के व्यवहारवाद को और समृद्ध करते हुए फांसीवाद के स्रोतों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, सामाजिक डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति में निरंतर चलने वाले विकट जीवन संघर्ष और योग्यतम प्राणी के जीवित रहने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसे ही डार्विनवाद का कहा जाता है। ऑस्ट्रियन समाजशास्त्री ग्रम्पलाविज आदि कुछ विचारकों ने इसे सामाजिक क्षेत्र में लागू करते हुए कहा कि प्राकृतिक क्षेत्र की भांति समाज में भी व्यक्तियों तथा समुदायों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है और इस संघर्ष में वे ही व्यक्ति और समुदाय विजयी होते हैं जो शक्तिशाली, सुदृढ़ और अनुशासनबद्ध हों। इसी को सामाजिक डार्विनवाद की विचारधारा कहा जाता है। मुसोलिनी और हिटलर इस पर अत्यधिक बल देते हुए कहते हैं कि संघर्ष ही मानव समाज की प्रगति का मूल मंत्र है। मुसोलिनी नीत्शे की विचारधारा से प्रेरणा लेते हुए संघर्ष की धारणा को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करते हुए कहता है कि अनवरत शांति ना हो तो संभव है और ना ही उपयोगी। मानव जाति का उत्थान युद्ध से ही संभव है। मानव इतिहास एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व पाने के लिए संघर्ष करने का इतिहास है और फांसीवाद के द्वारा युद्ध के आधार पर साम्राज्यवाद की स्थापना की जानी चाहिए। फांसीवाद दर्शन पर सामाजिक डार्विनवाद का प्रभाव स्पष्ट है। सामाजिक डार्विनवाद ने ही वस्तुतः मुसोलिनी को अनुशासन प्रिय, कठोर और साम्राज्यवादी बना दिया। दूसरा, अबौद्धिकतावाद। अबौद्धिकतावादी दार्शनिकों में विलियम जेम्स, बर्गसा, सोरेल, शोपेनहावर, नीत्शे और परेटो आदि प्रमुख हैं। डेकार्ट की बुद्धिवादी विचारधारा के नितांत विपरीत अबौद्धिकतावादी विचारधारा मानती है कि मनुष्य सोच विचार कर कार्य करने वाला विवेकशील प्राणी नहीं है, वरन वह अपने सभी कार्य बुद्धि के स्थान पर अंतः प्रेरणा, अंधश्रद्धा और विश्वास से प्रेरित होकर करता है। अबौद्धिकतावाद से प्रेरणा लेते हुए मुसोलिनी ने अंधश्रद्धा को अपनाने पर बल दिया था। उसने कहा, हमारी अंधश्रद्धा हमारा राष्ट्र है, हमारी अंधश्रद्धा हमारे राष्ट्र की महानता, विश्वास ही पर्वतों को हिला सकता है, तर्क नहीं। तर्क एक साधन हो सकता है किंतु जनता की प्रेरक शक्ति नहीं बन सकता। इसी आधार पर फांसीवाद ने इटली की जनता को दो नोट दिए, पहला, मुसोलिनी सदैव ठीक होता है तथा दूसरा, मुसोलिनी के आदेशों व आज्ञाओं में हमेशा विश्वास करना चाहिए, उनका पूरी तरह पालन करना चाहिए और उनके लिए युद्ध तक तैयार रहना चाहिए। औपचारिकतावाद में विश्वास के कारण ही मुसोलिनी ने अपनी व्यवस्था के लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किए। तीसरा, परंपरावाद। फांसीवाद मैजिनी और त्रिसके के परंपरावादी दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित है। शासन सत्ता प्राप्त करने के पूर्व मुसोलिनी परंपराओं का विरोधी था और एक नितांत नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था, किंतु शासन सत्ता प्राप्त करने के उपरांत उसने यह अनुभव किया कि अपनी सत्ता को स्थायी बनाए रखने के लिए गौरवपूर्ण रोमन साम्राज्य, राजतंत्र और रोमन कैथोलिक चर्च की परंपराएं बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं। परंपराओं का निर्वहन करते हुए उसने राजतंत्र को सुरक्षित रखा और स्वयं नास्तिक होते हुए भी जनता का सम्मान और पोप का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1626 ईस्वी में पोप के साथ समझौता कर लिया। वह सदैव इस बात पर बल देता था कि किसी राष्ट्र की विशेषता उसकी गौरवपूर्ण ऐतिहासिक परंपराएं होती हैं। इटली का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और उसके शब्दों में इटली को पुनः तीसरी बार मानवता का नेतृत्व करना है। आदर्शवाद फासीवाद विचारधारा पर सबसे अधिक प्रभाव रूसो, कांट, पिक्टे और हीगल के आदर्शवाद का रहा और फासीवाद को बहुत अधिक सीमा तक हीगल के आदर्शवाद का राजनीतिक शिशु कहा जा सकता है। जोड़ आदर्शवादी विचारकों को फासीवाद व नाजीवाद का आध्यात्मिक पूर्वज कहता है। फासीवाद मार्क्स के भौतिकवाद को अस्वीकार और आदर्शवाद को स्वीकार करता है। मुसोलिनी के शब्दों में फासीवाद भौतिकतावाद के सिद्धांत को अस्वीकार करता है। फासीवाद विचारधारा का सर्वाधिक प्रमुख तत्व सर्वाधिकारवादी राज्य की धारणा है, जो निश्चित रूप से आदर्शवाद से ही प्रेरित है। व्यक्तित्व स्वतंत्रता, नैतिकता, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों आदि बातों के संबंध में भी फासीवादी विचारधारा पर आदर्शवाद का प्रभाव नितांत स्पष्ट है। रूसो, ग्रीन और बोसंको आदि आदर्शवादी राज्य की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति मानते हैं और उनका विचार है कि राज्य व्यक्ति का विरोधी न होकर उनका सहयोगी एवं पूरक है। इसी धारणा को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुसोलिनी कहता है कि राज्य एक आध्यात्मिक और नैतिक सत्ता है। यह एक ऐसा संगठन है जिसमें प्रादुर्भाव और विकास में आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। राज्य जनता की आत्मा को अभिव्यक्त करता है। फासीवाद भी आदर्शवाद के ही समान राज्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए कहता है कि ना तो व्यक्तियों का निरपेक्ष स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है और ना ही उनके द्वारा किसी भी स्थिति में राज्य का विरोध किया जा सकता है। व्यवहारवाद जेम्स के व्यवहारवाद के अनुसार सत्य की कोई शाश्वत सत्ता नहीं है, वह परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है और एक विशेष स्थिति के अंतर्गत सत्य वही है जो हितकर है। मुसोलिनी ने कहा था कि उसके फासिस्ट दर्शन का मूल आधार व्यवहारवाद ही है। मुसोलिनी का व्यवहारवादी दर्शन कूड़ा अवसरवादी था। उसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जिस सिद्धांत को अपनाना उचित और आवश्यक समझा उसे अपनाया। सत्ता प्राप्त करने के पूर्व मुसोलिनी धर्म विरोधी और नास्तिक था। पदारूढ़ होने के बाद उसने ईश्वर की दुहाई दी और पोप के साथ समझौता कर लिया। किसी समय वह सोरेल के विचारों से प्रभावित और संघवादी आंदोलन का कट्टर समर्थक था। बाद में वह श्रमिक आंदोलन का घोर विरोधी हो गया। किसी समय शांति का समर्थन करने वाले मुसोलिनी के बाद युद्ध का प्रबल पोषण किया। इटली का अधिनायक बनने के एक वर्ष पूर्व उसने घोषित किया था कि वह किसी भी प्रकार की तानाशाही को स्वीकार नहीं करेगा। व्यवहार में उसने इटली की प्रजातांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन करते हुए एक सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना की। सत्ता प्राप्त करते ही उसने अपने समाजवादी साथियों को जेलों में ठूसा, मरवाया और देश छोड़ने के लिए बाध्य किया। उसकी लज सिद्धि में सहायता देने वाला प्रत्येक उपाय उसके लिए न्यायोचित और सत्य था।